ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
तो अपने जो धनुष बाण है यहां डुड्डी में रखकर सो गए थे. आप लोग कभी निद्रा लगती है तो कुर्सी में डुड्डी रखकर सोते हो कि नहीं है? ऐसे ही करके तो धनुष बाण को यहां रखा, अड़ा दिया, फिर वो सो गए. अब जगे तब तो सब देवताओं ने कहा जाकर, उदय होता है ना, दीमक, संस्कृत में दीमक कहते हैं उसको, उसको कहा, अरे तुम लोग सब जाओ और उस धनुष बाण की जो डोरी है उसको चाट डालो, तो उससे क्या होगा, तो उनकी निद्रा खुल जाएगी. वो डोरी कट चूटते हैं, डोरी जब चूट जाएगा, टूट जाएगा तो चौड़ा हो जाएगा, तो उनका निद्रा खुल जाएगी. दीमक ने कहा कि नहीं नहीं, सोते हुए को नहीं उठानी चाहिए, पाप लगता है. एक साधारण जीव भी सोता हुआ हो तो उसको नहीं उठानी चाहिए, वो तो साक्षात भगवान सो रहे, उनको क्या उठाना है. बोले नहीं नहीं, ये काम तो तुमको करना ही पड़ेगा भाई. मुझे क्या दोगे बोलो? ये कमीशन घुस खाने का काम तो पहले से हुआ है. मैं मान लो कि वो धनुष बाण के डोरी को मैं तोड़ूंगा चाट कर, तो हमको मिलेगा क्या? तो सब देवताओं ने कहा कि यज्ञ में हमारे लिए जो आहुति डालते हैं, आहुति डालते समय यज्ञ कुंड के चारों तरफ जो चरु गिर जाता है वो सब तुमको खाने को दे देंगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. सच? बोले हां. तब जाते सभी गए, दीमक सब गए और तो डोरी चाटना शुरू कर दिया. चाटते चाटते जब डोरी टूट गई तो एकदम धनुष का वो खुल गया, उछल गया. उछलते ही विष्णु का तो गर्दन ही कट गया, दो टुकड़े और कट गया. इतना ही नहीं, कट के वहीं टुकड़ा रहता तो वो उसके झटके से वो समुद्र में जाकर गिर गया. अब ये प्रसंग आत्मानंद ने गप कर दिया, कहोगे तो देवी भागवत देख लो भाई, देवी भागवत में लिखा है. अब क्या करे? हाय राम, ये तो हमने जगाने के लिए किया था, वो तो गर्दन ही कट गया. तो अश्विनी कुमार थे देवताओं के वैद्य, चिंता न करो, हम भी शिव के चेले हैं, हमने भी मेडिकल साइंस पढ़ा है, हम भी सर्जन हैं, जाओ जो सिर मिलता है वो लेके आओ. फटाफट देवता लोग दौड़े तो घोड़ा वही पड़ा हुआ था एक, तो उसी का सिर काटा और ला के दिया. ये मिल गया तो जोड़ा तो उल्टा जुड़ गया, सिर उल्टा जुड़ गया. समझे कि नहीं? क्योंकि भगवान विष्णु जब उनका सिर कट गया तो पेट के बल पर गिरे थे, और सिर न होने से किधर पेट है किधर पीठ है पहचान नहीं पाए देवता लोग. उल्ट ला के पीछे से इधर मुख करके गाड़ दिया, तो जब खड़े हुए विष्णु मुख तो पीछे ले जा, जो हो सो होगा. बोले ये सब क्या हुआ महाराज, तुम लोगों ने मुझे क्यों निकाला? बोले महाराज वो हयग्रीव राक्षस बड़ा उत्पात कर रहा था और आप तो आराम से सो गए थे, या हम लोगों को तो जीना दुभर हो गया था, और इसलिए आपको उठाने जगाने के लिए किया था. अब क्या पता कि आपका गर्दन ही कटेगा, अब कट गया, अब तो करे क्या, अब ला के जोड़ दिया तो ये भी उल्टा जुट गया। हाय राम, जो होता है अच्छा ही होता है। जब विचार किया तो उसने वरदान क्या मांगी थी, बोले मेरी मृत्यु मेरे से ही हो, तो हयग्रीवा की मृत्यु हयग्रीवा से ही हो, तो विष्णु को हयग्रीव बनना पड़ा और इतना खटपट करना पड़ा। देखो, समझे कि नहीं? इसी तरह भगवान शिव को, गणेश को ये सारी खटपट करना पड़ा। तो पार्वती को समझाया आखिर शिव जी ने, विष्णु के सिर जोड़ने के समय में हाथी का सिर नहीं मिला, क्योंकि हाथी का सिर मिलता और हाथी का सिर जोड़ देते तो हयग्रीव न मरता, तो घोड़ा ही मिला। और गणेश के सिर जोड़ते समय में हाथी न मलकर घोड़ा मिलता, घोड़े का सिर मिलता तो गणेश गजानन न होकर अश्वानन होते, और जो अश्वानन है वो गणाधिप नहीं हो सकता है, गणाध्यक्ष नहीं हो सकता है, गणपति नहीं हो सकता है। वेद ने सीधे लिखा है जो गणपति होगा वो गजानन होगा। ये देखो ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, चिंता न करो। जब ये प्रमाण मिल गया तो पार्वती खुश हो गई। इस बात को लेकर मेरा बेटा भले ही हाथी का सिर से जिंदा हो गया, लेकिन मेरा बेटा सारे गणों का अध्यक्ष हो गया, अग्र पूजक का अधिकार हो मिल गया उसको, प्रथम पूजा अग्र पूजक हो गया। ले जी, बाप से बेटा अग्र पूजक हो गया, शिव कृपा से ही न हुआ। अब ये मुसल का प्रहार गणेश न करते तो गणेश अग्र पूज्य होते, गणाध्यक्ष होते। शिव की कृपा नहीं है तो और क्या है, बोलो। शंकराचार्य जी उस प्रसंग के प्रति इशारा करते हुए कहते हैं, अर्जुन ने धनुष बाण मारा तो आप खुश हो गए, गणेश ने मुसल मारा तो आप खुश हो गए, अब क्या मैं भी मुसल उठाऊं? मैं तो क्यों नहीं खुश होते हो? नति भी नुति भी बहुविध पूजा, अनेक प्रकार की पूजा भी कर ली है। नति वीर नुति भी स्तमी ही सब पूजा, विधि वीर ध्यान समाधि वीर न तुष्ट। तो क्या धनुषा मुसले न च अस्मभीर, अब पत्थरों से आप खुश होंगे क्या? बता, आप ही बताओ, जिससे हम खुश हो गए मैं उसी का प्रयोग करूंगा। ते प्रीति कर्म तथा करो, अब पत्थरों से खुश हुए हैं भगवान शिव, ये प्रमाण बहुत मिलता है, समझे कि नहीं? दक्षिण भारत में पेरियार पुराणम एक तमिल भाषा का ग्रंथ है। अब लोग इधर पुराण पुराण बोलते हो ना, शिव पुराण विष्णु पुराण आदि पुराण पुराण है, वैसे तमिल भाषा का ग्रंथ है पेरियार पुराणम, है पेरियार, पता नहीं लेकिन पुराण है, ग्रंथ है। उसमें भगवान शिव के 54 परम भक्तों के चरित्र का वर्णन है, एक से एक, जैसे प्रहलाद का चरित्र है ऐसे ऐसे। तो तमिल में, तमिलनाडु में, साउथ में, दक्षिण में जो बड़े बड़े भगवान शिव के भक्त हुए हैं उन लोगों के अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन है पेरियार पुराण में। और शंकराचार्य जी उस बात को जानते थे क्योंकि दक्षिण के ही थे, उन्होंने पेरियार पुराण तो पढ़ा ही था। वहां एक भक्त हुए हैं उस भक्त का नाम था शाक्य नायर, शाक्य नायर। उसके शिव पूजा की बड़े विचित्र ढंग था भाई। मां बाप थे नहीं, मर गए थे बचपन में। उसकी एक बहन थी शाक्य नायर की, उसका नाम अक्कार था। उधर के नाम ऐसे होते ना, अक्का नाम था उसका। अक्का भगवान शिव की परम भक्त थी और उसने अपने भाई को भी शिव दीक्षा दी थी और शिव पूजा का नियम बताया था और दोनों भाई बहन परम शिव के भक्त थे। लेकिन शिव भक्ति मात्र से तो काम चलेगा नहीं, योगक्षेम के लिए तो कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने काम खोजना शुरू किया, कहीं काम मिले तो काम करें। तो शाक्य नायर काम खोजते हुए गए थे तो किसी ने उस समय का जो वहां का राजा था वहां कुछ काम मिल गया उनको। तो काम करते थे, योगक्षेम चलता था। लेकिन वो राजा फिर परम नास्तिक था, परम नास्तिक, मूर्ति पूजा नहीं मानता था, धर्म कर्म नहीं मानता था और कोई इस तरह नियमित पूजा करते हुए उसको दिखाई पड़ा तो उसको दंडित करता था। विशेष करके उसके मातहत के कर्मचारी लोग, तो भगवान की भक्ति करते हुए पता चला तो उसको नौकरी से हटा देंगे, मार ही डाले। तो बड़ी समस्या हुई। शाक्य नायर ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं बड़ा दुविधा में पड़ गया हूं, क्या करूं? नौकरी छोड़ता हूं तो योगक्षेम की समस्या है, नौकरी करता हूं तो शिव पूजन की समस्या है। राजा नास्तिक है, उसने सूचना प्रवाह कर दिया कि मेरे राज्य में कोई भी भक्त भगवान की पूजा न करे, सेवा न करे, भक्ति न करे। और इस अवस्था में मैं भगवान की पूजा करूं, एक दिन एक दिन उसको पता तो चलेगा, मुझे निकाल देगा। खाली निकाल दे तो गनीमत, मुझे दंडित करेगा, मार भी सकता है वो, क्या करूं? बोले ऐसी समस्या है? बोले हां बहन। तो बहन अक्का ने कहा, बेटा भैया मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बोले क्या? रोज नियमित एक पत्थर मारा करो। शिव मंदिर में अंदर शिवलिंग होता है, हाँ। सबके देखते देखते उठाओ पत्थर और जोर से निशाना साधकर ठीक शिवलिंग में लगे ऐसा पत्थर मारा करो। तो देखने वालों को लगेगा कि परम नास्तिक है, तो तुम्हें तो और पुरस्कार मिलेगा। लेकिन इतनी समझना कि पत्थर मारने से पहले दिल पत्थर का नहीं बनाना, दिल पूरी तरह भगवत भक्ति से बनना और कर्ण कहना, महाराज मैं आपकी पूजा छोड़ नहीं सकता और राजा का अनुशासन खतरनाक है, उसके अनुशासन से आपकी पूजा कर नहीं सकता और मैं आपकी पूजा छोड़ नहीं सकता। कि मैं लोगों के दृष्टि में भले ही पत्थर हो महाराज, तुम पुष्प समझकर ही ग्रहण करना महाराज, फूल ही समझकर ग्रहण करना। इस भावना से वह पत्थर मारा करता था बहन की आज्ञा से। तो राजा के साथ कई सवारी जाती थी, राजा की वो भी जाता था और राजा को कहता था, महाराज एक मिनट, अब क्या हो गया, मंदिर के आगे? बोले ये हिंदू लोग बिना मतलब का ये पूजा पूजा भगवान भगवान करते हैं, सारा समाज को बिगाड़ रखा है इन लोगों ने। पूजा क्या, इनको तो पत्थर मारना चाहिए। राजा के सामने पत्थर उठाया, निशाना साधा और मन ही मन भावना की, शिवजी ये मेरे तरफ से पुष्प है। मारा राजा के सामने पत्थर, मारा ठीक शिवलिंग में लगा। राजा ने देखा, वास शाबाश है, क्या बढ़िया मेरा भक्त मिला है, मेरा कर्मचारी है। एक दिन की बात है, और ये नियमित पत्थर मारते थे सत्यनारायण, रोज आना और पत्थर उठाना मारना। एक समय नदी में बहुत बाढ़ आ गया और नदी में पुल तो था नहीं, जा नहीं सके, पत्थर मारने पार जा नहीं सके। परिणाम हुआ पानी में भीज गए, उनको बुखार हुआ भयंकर, तो सो गए, कमरे में आकर सो गए। तो राजा ने देखा क्या सत्यनारायण आया नहीं, किसी ने कहा कि वो तो बहुत बीमार हो गया, चलो जाके देखता हूं। तो राजा सत्यनारायण कहां आया, भगवान शिव वहां प्रतीक्षा करते थे कि आज सत्यनारायण पूजा करने क्यों नहीं आ रहा है। तो बड़ा विचित्र है वो, तो हमने एक दिन कहा था ना, कहते हैं ना ये दुखा है, क्या है? क्या शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर। अब ये मोहनिश दिन दिन आकर रोज कहता है, महाराज मालिश करूं, मालिश करूं, मालिश करो, एक्सरसाइज करो, मालिश करो, एक्सरसाइज करो, मालिश करो, हैरान करता है। अब एक दिन मालिश करने नहीं आएगा तो क्या होगा भाई, क्यों नहीं आया, कहना पड़ेगा कि नहीं। और सत्यनारायण एक दिन फूल चढ़ाने नहीं गए, पत्थर मारने नहीं गए, भगवान शिव ने विचार किया क्यों नहीं आए, पता लगा तो बेचारा बिरामी बीमार हुआ है, बहुत भारी बुखार हुआ है। तो भगवान शिव स्वयं सत्यनारायण को झोपड़ी में पहुंच गए और खुद शिव सत्यनारायण के बुखार में सिर में जल की पट्टी कर रहे हैं, ठंडे जल के पट्टी कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। राजा जब वहां पहुंचा, देखता है सत्यनारायण की सेवा करने लगे, कौन देखता है तो अरे सिर में त्रिशूल मुकुट है, चंद्रमा है, गले में सर्प है, ये तो शिवा है। और ये शिवा सत्यनारायण की पूजा सेवा कर रहा है, स्वयं जल की पट्टी कर रहा है, ठंडे जल की पानी पट्टी, क्या अद्भुत। ये तो रोज शिवजी को पत्थर मारता था और आज शिवजी। सत्यनारायण ने पूछा, भगवान ये क्या लीला है, मैं तो रोज आपको पत्थर मारता था। बेटा तो पत्थर नहीं फूल ही देता था। नीलकंठ दीक्षित ने एक कविता लिखी है, अर्चामीति धिया यदेव कुसुमम शिप्वा जनो मुच्यते, मैं परमात्मा की पूजा करता हूं इस भावना से भक्त लोग शिवजी को फूल चढ़ाते हैं और उस फूल चढ़ाकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मुक्त हो जाते हैं, और वही फूल कामदेव ने शिवजी के ऊपर फेंका था, लेकिन कामदेव भस्मीभूत होकर खराक होकर खत्म हो गया। वस्तु तो एक ही है ना, भक्त भी फूल चढ़ाता है, कामदेव ने भी फूल ही मारा था। पुष्पायुध बोलते हैं ना कामदेव को, उसके धनुष हथियार ही फूल है, पांच हथियार है, वही मारा था, लेकिन वो भस्मीभूत हो गया। नीलकंठ दीक्षित कहते हैं, विद्या मीति धिया तदेव विकिरण भस्मीकृतो मन्मथ इत्याभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिको। भगवान शिव कैसे हैं, आभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिक, वो वस्तु पर विचार नहीं करते हैं, वस्तु कैसी है इस पर विचार नहीं करते हैं शिव, उसकी भावना कैसी है। आभ्यंतर वृत्ति रसिक हैं, कामदेव ने फूल मारा लेकिन इनको जीतूंगा करके फूल मारा था, शिवजी को मैं जीतूंगा, सबको जीता है इनको भी जीतूंगा करके फूल मारा था, भस्मीभूत हो गया। भक्त वही फूल चढ़ाता है परमात्मा को प्रसन्न करूंगा करके, वो मुक्त हो जाता है। इत्याभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिको बाह्यान अपेक्षाचये, परमात्मा बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं करते हैं, भावना की अपेक्षा करते हैं। स स्वामी मम दैवतम तदितरो नामना पिनामना यते, वही मेरे परम स्वामी हैं, उस शिवजी के अलावा अन्य वो तो नाम मात्र के स्वामी हैं, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे असली स्वामी तो शिव ही है जो आभ्यंतर वृत्ति मात्र रसिक है। हाँ, सक्यनार ने पत्थर मारा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और शंकराचार्य जी तीन दृष्टांत दे रहे हैं शिव जी के सामने। अर्जुन ने बाण से मारा तब आप खुश हुए, गणेश ने मुसल से मारा तब आप खुश हुए, सक्यनारायण ने पत्थर से मारा तब आप खुश हो गए। अब मैं भी अब इन्हीं में से कोई एक उठाना पड़ेगा आपको खुश करने के लिए, नहीं तो पूजा करता हूं खुश नहीं हो रहे हो, नमस्कार करता हूं आज तो प्रसन्न नहीं हो रहे हो, है वाह क्या कहना। बचसा चरितम बदामि शंभो अहम उद्योग विदा सुते अप्रशक्त हो मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवम नमामि। भगवान की सेवा करने की तीन मुख्य विधा है और इन्हीं तीन साधनों से, तीन विधि से ही भगवान की सेवा की जा सकती है। भक्तों को इसी का आश्रय लेना चाहिए। बचसा चरितम बदामि, भक्त को जब भी अवसर मिले तो परमात्मा की ही चर्चा करे वाणी से, संसार और सांसारिक विषयों की चर्चा न करे। बचसा चरितम बदामि हे शंभो, संबोधन है, अहम योग विदासु ते अप्रसक्त, अहम उद्योग विदासु ते अप्रसक्त, अन्य पूजा या अन्य आपको प्रसन्न करने की जो उद्योग हैं, उपक्रम हैं, विधि हैं, उसके लिए मैं असक्त हूं, अप्रसक्त, मैं सामर्थ्यशाली नहीं हूं, मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है कि आपके लिए बढ़िया मंदिर बनाऊं और वहां आपकी प्राण प्रतिष्ठा करूं और नित्य निरंतर रुद्राभिषेक के द्वारा, नमक अध्याय द्वारा, आपकी अर्चना करूं ये मेरी बस की बात नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अहम उद्योग विदासु ते अप्रसक्त, आपकी पूजा करने में मैं असक्त हूं, असामर्थ्यशाली हूं। हां यह है कि आपकी कृपा से मुझे जो वाणी मिली है उस वाणी से आपके नित्य निरंतर गुणानुवाद गा सकता हूं, वचसा चरितम बदामि। और दूसरी बात, मनसाकृतिमीश्वरस्य सेवे, बैठकर मैं आंख बंद करके मन से आपके दिव्य चरित्र विद्या स्वरूपों का मैं ध्यान कर सकता हूं, और तो कुछ नहीं कर सकता। विष्णु ने तो सहस्र अर्चना की आपकी, और एक भूल कम होने से आपने आंखें ही चढ़ा दी। रावण ने तो अपनी बहुत अर्चना की और अपने एक एक करके दस दस मस्तक आपको चरण में अर्पण कर दिया। बाणासुर ने तो और भी ज्यादा, आपकी कृपा से ही प्राप्त 1000 हाथ से 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रोज आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत 1604 पूजा विधि से पूजा करता था और नर्मदा में विसर्जन करता था। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दैनदिनी। मुझमें यह सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए इतना ही है कि मैं बैठकर आसन लगाकर मनसा आकृतिम ईश्वरस्य सेवे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिं अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। मैं इस स्वरूप का तो ध्यान कर सकता हूं मनसा, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। शिरसा चैव सदा शिवम नमामि, और तीसरा विकल्प है मैं जो कर सकता हूं वो आपके श्री विग्रह जहां भी होंगे मैं सिर से उसको श्रद्धा से प्रणाम कर सकता हूं। बस वचसा चरितम बदामि, मनसा आकृतिम सेवे, और शिरसा चैव सदाशिवम नमामि, और मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। करना भी यही चाहिए शिव भक्तों को, इसके अलावा इन तीन कर्मों के अलावा अन्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और आगे के श्लोकों की व्याख्या अब कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।